ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। ताप्लेजुंग के पाथीभरा में केबल कार निर्माण के खिलाफ आंदोलनरत पक्ष को शांतिपूर्ण वार्ता में आने का सरकार ने किया आग्रह। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद विधेयक 2081 राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मति से हुआ पारित। और इसराइल ने गजा में दी जाने वाली मानवीय सहायता सामग्री की एंट्री पर लगा दी रोक। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाथीभरा केबल कार निर्माण के मुद्दे को लेकर आंदोलनरत पक्ष को शांतिपूर्ण वार्ता में आने का आग्रह किया है। आज की राष्ट्रीय सभा बैठक में शून्य, आकस्मिक और विशेष समय में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देते हुए गृहमंत्री रमेश लेखक ने ये बात कही। गृहमंत्री लेखक ने बताया कि सिंह दरबार परिसर में मौजूद निकायों के भवनों के समग्र आपदा जोखिम मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित करके काम आगे बढ़ाया गया है। बैठक में सांसदों ने मॉनसून जन्य आपदा व्यवस्थापन में सरकार की तैयारी, पाथीभरा केबल कार निर्माण के विरुद्ध हो रहे आंदोलन लगायत विषय में सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 राष्ट्रीय सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इससे पहले कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने विधायन व्यवस्थापन समिति की रिपोर्ट सहित इस विधेयक पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा था। विधेयक पर उठे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों को विधेयक में शामिल किया जाएगा। इससे पहले प्रतिनिधि सभा द्वारा संदेश सहित प्राप्त बैंकिंग कसूर तथा द्वितीय संशोधन विधेयक 2080 पर विचार करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने प्रतिनिधि सभा द्वारा संदेश सहित प्राप्त इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा था। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक फागुन 22 गते गुरुवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। नेकपा एमाले की आज हुई केंद्रीय सचिवालय बैठक में पाथीभरा में केबल कार निर्माण के मुद्दे पर सरोकार वालों के साथ चर्चा कर विवाद का समाधान निकालने के लिए संबंधित पक्षों का ध्यान आकर्षित किया गया। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और सरोकार वालों के साथ चर्चा कर केबल कार निर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर जोर दिया गया। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए ये बात कही। इसके अलावा एमाले सचिवालय बैठक में जनसंघ संगठनों की केंद्रीय समिति और पदाधिकारियों की संरचना को लेकर भी निर्णय किया गया। नेकपा एमाले के जनसंगठनों में केंद्रीय समिति, सचिवालय और स्थायी समिति की परंपरा रही है, लेकिन अब स्थायी समिति की संरचना न रखने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी महासचिव पोखरेल ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि युवा के समग्र विकास में सहयोग देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। आज सैनिक मंच टूड़ी खेल में आयोजित राष्ट्रीय सेवा दल एनसीसी की सीनियर डिवीजन तालीम के दीक्षांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वोत्कृष्ट समाज निर्माण के लिए राष्ट्र को अनुशासित युवा और कुशल नेतृत्व की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने उच्च मनोबल और नैतिक आचरण के साथ देश के समग्र विकास में आगे बढ़ने का दीक्षित युवाओं से आग्रह किया। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा है कि अब सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों द्वारा लिखी गई दवाएं न होने की स्थिति नहीं होगी। इलाम अस्पताल का आज निरीक्षण के दौरान मंत्री पौडेल ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड द्वारा निर्धारित दवाएं अस्पताल में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड ने 98 प्रकार की दवाएं निर्धारित की हैं और इन दवाओं को अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश किया गया है। मंत्री पौडेल ने कहा कि बीमा के कुछ प्रबंधन में समस्याएं हैं जिन्हें सुधार किया जाएगा। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने कहा कि प्रदेश में मैथिली और लिम्बो भाषा को प्रदेश सरकार की कामकाजी भाषा बनाने को लेकर सरकार गंभीर है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल द्वारा आज विराटनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कार्की ने कहा कि भाषा के प्रयोग संबंध में आवश्यक विचार विमर्श, कानून निर्माण, लिपि खोजबीन, विकास और प्रवर्धन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। मौके पर सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने कहा कि देश के विभिन्न भूभाग में मौजूद जात समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के संरक्षण में रेडियो नेपाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G यो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि देश के उत्पीड़ित समुदाय के अधिकार और पहचान स्थापित करने के लिए सबसे अधिक त्याग माओवादियों ने किया है। धनुषा के कमला नगरपालिका वार्ड नंबर 3 परसा में आयोजित शहीद परिवार सम्मान तथा भेंट वार्ता कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि मधेशी जनता की मुक्ति के लिए बड़ा बलिदान माओवादियों ने दिया है। उन्होंने कहा कि माओवादी और मधेशी जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अब उस भ्रम को दूर करके माओवादी और मधेशी जनता के बीच मजबूत एकता कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। बस्ती से निकलने वाले नाले सीधे सड़क तथा नदी पोखर में पहुंचने के बदले प्रशोधन करके साफ पानी उपयोग करने के हिसाब से पालपा में नमूना परियोजना का संचालन हुआ है। जिला के सामाजिक क्षेत्र में क्रियाशील रोटरी क्लब ऑफ तानसेन द्वारा बर्बाद हो रहे गंदा पानी को प्रशोधन करके फिर से प्रयोग करने के लिए गंदा पानी प्रशोधन UMH परियोजना संचालन में लाया गया है। क्लब ने करीब 4,22,00,000 के लागत में यह परियोजना निर्माण किया है। क्लब ने उस परियोजना को निर्माण कर यूनाइटेड मिशन अस्पताल को हस्तांतरण किया है। तानसेन नगरपालिका वार्ड नंबर 1 मिशन स्थित नर्सिंग स्कूल नजदीक के खाली जमीन में गंदा पानी प्रशोधन संयंत्र का संरचना निर्माण किया गया है। इस्लाम धर्मावलंबियों का महान पर्व रमजान आज से शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाले रमजान पर्व में इस्लाम धर्मावलंबी दिन भर रोजा उपवास रखते हैं और शाम को नमाज की आजान सुनकर रोजा खोलते हैं, यानी खाना खाते हैं। शरीर को स्वच्छ रखकर ही रोजा रखने की मान्यता है, लेकिन नाबालिग, बीमार, गंभीर रोग से पीड़ित और गर्भवती महिलाओं के लिए रोजा रखना अनिवार्य नहीं है। उर्दू कैलेंडर के अनुसार हिजरी संवत का रमजान महीना 9वां महीना होता है। रमजान महीने में मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान अवतरित हुआ था और इस महीने में अल्लाह की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा विश्वास है। लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद अवरुद्ध नगमा गमगड़ी सड़क खुल गई है। इस सड़क के भुलभुले और 7 मोड़ पर भूस्खलन और बर्फबारी के कारण पिछले 2 दिनों से सड़क अवरुद्ध थी। अछाम में लक्षित समूह की लगभग 100% किशोरियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV वैक्सीन लगाई गई है। माघ 22 गति से शुरू हुए गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ निशुल्क HPV टीकाकरण अभियान के तहत 13,943 किशोरियों को टीका लगाया गया है। मनांग जिले में आज से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के खिलाफ HPV टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। जिले की 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को टीका लगाया जा रहा है। सार्वजनिक संचार माध्यमों द्वारा खोजपूर्ण और विश्लेषणात्मक समाचार सामग्री के उत्पादन पर जोर दिए जाने की मांग सरोकार वालों ने की है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय और राष्ट्रीय समाचार समिति रासुसा द्वारा आयोजित क्षमता विकास कार्यक्रम के समापन समारोह में कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र झा ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकारों का ज्ञान नई पीढ़ी तक पहुंचकर खोजपूर्ण समाचार संकलन और प्रसारण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। एक दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम में रासुसा गोरखापत्र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के अंतर्गत रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के पत्रकारों ने भाग लिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल ने गजा में दी जाने वाली किसी मानवीय सहायता सामग्री की एंट्री पर रोक लगा दी है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हमास ने गजा युद्ध विराम समझौते के पहले चरण को बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्वीट विटफोक की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव में रमजान और यहूदी पासवर के लिए युद्ध विराम का 6 सप्ताह का विस्तार शामिल था। इजरायली सरकार ने कुछ घंटे पहले ही इसका समर्थन किया था, लेकिन हमास ने तर्क दिया कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत पूरी करना और मौजूदा सौदे के दूसरे चरण को लागू करना है। इजरायल और हमास के बीच 19 जनवरी को लागू हुआ गजा युद्ध विराम समझौते का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो गया है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और अन्य 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल ने गजा पट्टी में हवाई और जमीनी अभियान के साथ जवाब दिया। इस दौरान करीब 15 महीने में गजा में कम से कम 48,365 लोग मारे गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। तापलीजुंग के पाथीवरा में केबल कार निर्माण के खिलाफ आंदोलनरत पक्ष को शांतिपूर्ण वार्ता में आने का सरकार ने किया आग्रह। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद विधेयक 2081 राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मति से हुआ पारित। और इसराइल ने गजा में दी जाने वाली मानवीय सहायता सामग्री के एंट्री पर लगा दी है रोक। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।